वहीं दूसरी ओर ध्रुव और वंशिका एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर थोड़ी देर बैठे रहे। ध्रुव ने वंशिका से वादा किया कि वो उसकी जिंदगी में परिवार की कमी को पूरी करने की कोशिश करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तब ध्रुव के इस वादे ने वंशिका की आंखों को भिगो दिया था। वंशिका आगे बढ़कर ध्रुव को गले से लगा लिया और कब ध्रुव के हाथ वंशिका की कमर पर फिसलने लगे उसे एहसास नहीं रहा। जल्दी ही वे दोनों एक दूसरे में खोकर अंतरंग होने लगे। वहीं आकाश और रश्मि का भी यही हाल था। तब आकाश ने रश्मि की ओर देखकर फ्लर्टिंग आवाज में कहा, अब तो तुम्हारी बहन ने भी प्रेगनेंसी की न्यूज सुना दी है, आखिर तुम कब मुझे खबर दोगी? मुझे लगता है अब तुम्हें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि रश्मि ने पहले दिन ही आकाश से कह दिया था कि जब तक वो रौनक की जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं हो जाती तब तक वो अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेगी और अपना परिवार नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अब रौनक की खुशखबरी उन्हें मिल चुकी थी तो रश्मि ने तुरंत आकाश के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके होठों को जोरदार किस करते हुए नज़ाकत से बोली, माँ पतिदेव, मैंने कब आपको रोका है? आपको पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कितने अनरोमांटिक होते जा रहे हो। अब जैसे ही रश्मि ने शरारत से ये कहा, आकाश की आंखों में चमक लाते हुए बोला, ओह तेरी। वो तुरंत मुस्कुराते हुए रश्मि के होठों की तरफ झुकने लगा। वहीं दूसरी ओर एक और कपल राधिका और सुमित इस वक्त एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे। सुमित बड़े ही प्यार से राधिका को निहार रहा था और शांत आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया है। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा परेशान किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर अपने लिए एक खुशनुमा परिवार तैयार करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और मैं वादा करता हूँ, जितनी तुमने मेरी वजह से परेशानियाँ झेली हैं, मैं वो सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। ये बोलकर सुमित ने भी राधिका के माथे को चूम लिया था और राधिका ने भी आगे बढ़कर सुमित को गले से लगा लिया था और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। वेल, अविनाश और एंजल इस वक्त वीडियो कॉलिंग पर अपने दादाजी के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि अविनाश ने एंजल के साथ शादी की खबर सबसे पहले अपने दादाजी को देने के बारे में सोच लिया था, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उसने अपनी शादी की खबर दादाजी को बता दी थी। और साथ ही साथ आस्था की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है और आस्था भी अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है और दादाजी के बारे में सब कुछ जानती है, तो ये खबर भी अविनाश ने दादाजी को पहुँचा दी थी। इसीलिए दादाजी ने अब आस्था से मिलने की इच्छा जताई। तब अविनाश ने उन्हें धीरज देते हुए बोला, एक हफ्ता यहाँ रहकर मैं एंजल के साथ अमेरिका वापस आ रहा हूँ, उसके बाद मैं अरमान और आस्था को भी वहाँ बुला लूँगा। लेकिन अभी आस्था प्रेग्नेंट है जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर से उसने पहले ही इस बारे में कंसल्ट कर लिया था, वरना अब तक तो कब का आस्था को दादाजी से मिलने के लिए ले आता। इसीलिए उसने साफ शब्दों में दादाजी से बता दिया था कि आपको कुछ महीने और इंतजार करना होगा, आस्था अकेली नहीं बल्कि अब आपके ग्रैंड चाइल्ड के साथ आपके पास आएगी। ये सुनकर दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और वो भावुक होकर जिद करते हुए बोले कि वो आस्था को अपने सामने देखना चाहते हैं, वीडियो कॉल पर नहीं, इसीलिए वो सीधा सीधा आस्था को उनसे मिलवा दे, क्योंकि वीडियो कॉलिंग पर उनकी मुलाकात आस्था से अधूरी ही रह जाएगी और दादाजी ये नहीं चाहते थे। इसीलिए अविनाश ने भी मुस्कुराकर दादाजी की बात मान ली थी। तब दादाजी ने फोन काटने से पहले आशीर्वाद देते हुए कहा, एक काम करो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो बेटा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो गए हैं। ये बोलकर दादाजी ने सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कॉल काट दिया था। वेल, फोन कटने के बाद एंजल ने मुस्कुराकर अविनाश की ओर देखा। तब अविनाश ने अपने होठों को उसके होठों पर रखकर बेदर्दी से किस करते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, आज तक तुम मुझसे चिपकती हुई आई हो, अब मुझसे इतना दूर दूर क्यों बैठे हो? हाँ, ये बोलकर उसने जल्दी ही अपनी बाहों में एंजल को उठा लिया था, उसे जबरदस्त किस करने लगा। वेल, वहीं दूसरी ओर हमारे आहान मियाँ इस वक्त मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और रौनक कब से घूंघट डालकर शर्माकर बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि आहान आगे आएगा और उसका घूंघट उठाएगा। लेकिन आहान तो उस वक्त मुंह फुलाकर बैठ के कोने पर बैठा हुआ था। अब तो रौनक, जो कि आहान के आने और घूंघट उठाने का इंतजार कर रही थी, वो काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी। वैसे भी सब्र नाम की चीज रौनक में तो थी ही नहीं, इसीलिए दमदमाते हुए रौनक ने खुद ही अपना घूंघट उठा दिया और बेड से खड़ी होकर सीधा आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी ओर नाराजगी से घूरते हुए बोली, और छछुंदर, ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम मेरे पास आओगे और मेरा घूंघट उठाओगे, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? और ये मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो, जैसे तुम्हारी भैंस मर गई हो? जैसे ही रौनक ने अपनी भाषा में आहान को डांटा, आहान तुरंत फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा और खफा होने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता था वो धूप मुझे पहले ही छेड़ रहा था, मेरी बीवी मुझे ऐसे ही डांटेगी? तुम मुझे इस तरह से क्यों डांट रही हो? क्या तुम आराम से थोड़ी धीमी आवाज में मेरी परेशानी नहीं पूछ सकती थी? अब आहान को अपनी सुहाग रात की रात में रोते हुए देखकर रौनक को भी बुरा लगा। वो बोली, देखो मिस्टर आहान सिंघानिया, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था, अब तुम ही बताओ, मैं कब से तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तुम्हारी घूंघट उठाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम हो तुम, मेरे पास ही नहीं आ रहे हो। तो आहान रौनक को बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं,
कल नानी माँ ने मेरी धुलाई की थी, उससे मुझे प्राइवेट जगहों पर काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। अब जैसे ही अहान ने रोते हुए और मासूमियत से ये कहा, रौनक खिलखिलाकर हंसने लगी। अहान चिढ़कर मुंह फेरते हुए बोला, मैं जानता था कि तुम मेरी बात सुनकर इसी तरह से हंसोगी, इसीलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था। ये बोलकर अहान ने एक बार फिर मुंह फुला लिया था, तो फिर रौनक आगे आई और उसने अहान को गले से लगा लिया था और एक सॉफ्ट किस उसके होठों पर देते हुए बोली, अगर तुम्हें कहीं चोट लगी है तो जरूरी थोड़ी ही ना है कि हमें इस तरह से अपने रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। हम प्यार मोहब्बत से बातें करके भी तो अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही रौनक ने ये कहा, अहान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने भी खुश होकर बदले में रौनक को गले से लिया और अपनी बाहों में छुपाते हुए बोला, ठीक है, भले ही मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता ही हूँ ना। ये बोलकर उसने रौनक को जल्दी ही अपनी बाहों में उठा लिया, गोल गोल घुमाने लगा और उसके बाद रौनक को बेड पर लेटाकर उसे किस करने लगा था और रौनक भी उसका साथ देने लगी। वेल दोस्तों, इसी के साथ सारे कपल्स एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे कुछ दिन बाद। और इसी बीच हंसी खुशी के माहौल में कुछ महीने गुजर गए थे। परिवार के नाम पर टाइगर और मारिया का अरमान के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए अरमान चाहकर भी वो दोनों को अपने आप से अलग नहीं कर सकता था। इसीलिए अरमान सिंघानिया ने टाइगर और मारिया को कुछ वक्त के लिए विदेश में शिफ्ट कर दिया था, ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय कर सकें और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें।
अरमान की सेक्रेटरी मलाइका, जो अरमान को चाहती थी, अरमान के कहने पर जिस वक्त देव ने मलाइका को अपने तरीके से सजा दी थी और उस वक्त देव ने मलाइका जान अरमान से बचाई थी और मलाइका को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने देव के साथ साथ अरमान से भी माफी मांग ली थी और कसम खाई थी कि आज के बाद वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। फिलहाल क्योंकि देव ने उसकी जान बचाई थी, तो मलाइका ने अपनी पूरी जिंदगी देव के नाम कर दी थी और देव ने भी किसी तरह की नानुकुर ना करते हुए उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। और देव भी टाइगर और मारिया की तरह अरमान से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि अरमान ही उसका परिवार था। अरमान ने देव को इस काबिल बनाया था कि वो अपनी जिंदगी अपने बलबूते जी सके, इसीलिए देव ने अरमान से साफ शब्दों में कह दिया था कि वो हमेशा ही उसके साथ उसका भाई और असिस्टेंट बनकर खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेगा। हालांकि अरमान टाइगर, मारिया और देव को सेटल करना चाहता था, ताकि वे अपनी नई पहचान बना सकें, अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन उन तीनों ने ही साफ शब्दों में अरमान को इनकार कर दिया था, ये कहकर कि परिवार के नाम पर अरमान के सिवाय इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं था और अपनी कामयाबी और अपनी नई पहचान वो अरमान के साथ रहकर भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अरमान ने खुशी खुशी उनके फैसले को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ महीनों बाद अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन अरमान की जिंदगी में खुशियां आने वाली थी, यानी कि आस्था की डिलीवरी का दिन। फिलहाल अरमान सिंघानिया, जो कि अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, उसे पूरा यकीन था कि उसकी जिंदगी में बेटी ही आएगी और आस्था बेटी को जन्म देगी। साथ ही साथ अरमान ने एक लड़की के लिए अलग से एक रूम तैयार करवा दिया था, कमरे में पिंक कलर से पेंट करवा दिया था। अरमान तो जैसे ये सोचकर ही बैठा हुआ था कि उससे बेटी ही होगी और इसीलिए उसने सारी तैयारी कर ली थी। फिलहाल वो दिन भी आ गया जिस दिन आस्था को डिलीवरी पेन शुरू हो गए थे और जल्दी ही आस्था को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इस वक्त पूरा परिवार बाहर आस्था और उसके बच्चे के आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। रश्मि खुद आस्था के साथ डिलीवरी रूम में मौजूद थी और ठीक आधे घंटे बाद रश्मि डिलीवरी रूम से बाहर आई और मुस्कुराते हुए दादाजी के पास जाकर चहकती हुई बोली, कंग्रेचुलेशंस दादाजी, बेटा हुआ है। अब जैसे ही रश्मि ने ये खबर दी, सब लोगों का दिल खुशी से झूम उठा और आहान तो वहीं नाचने और कूदने लगा था और नटखट अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, मैं चाचू बन गया, अब मुझसे भी छोटा कोई आ गया है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वो अब बच्चों की तरह उछलने लगा। रौनक भी उसी तरह बच्चों की तरह उछल रही थी, लेकिन आहान ने उसे उछलने से रोक दिया था और उसे याद दिलाया कि वो अभी प्रेग्नेंट है, तो अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अब लेकिन बेटा होने की खबर सुनकर अरमान का मुंह उतर गया था। उसने अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन अब ये सुनकर कि बेटा हुआ है, उसके तो अरमान डूब गए थे, उसका चेहरा मुरझा गया था। दादाजी ने सबसे पहले अपने परपोते को गोद में लिया, जो कसमसाते हुए अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से दादाजी को देख रहा था। उसे देखकर दादाजी का दिल खुशी से झूमने लगा और फिर दादाजी ने संभालते हुए उसे अभिमान के गोद में दे दिया। तब अभिमान जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोले, ये तो बिल्कुल अरमान के जैसा लग रहा है। अब तो अरमान का रहा सहा दिल और टूट गया था, एक तो बेटा हो गया था, वो भी उसी के जैसा, तो उसे काफी बुरा लग रहा था। अरमान का मुंह इस तरह से उतर जाने पर सब लोग चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि अरमान अपने चेहरे से कितनी नफरत करता है, क्योंकि अरमान का चेहरा उसकी माँ वसुंधरा जी से मिलता है। लेकिन अरमान अपने बेटे को देखने के बजाय रश्मि के पास गया और बेचैनी से बोला, मैं आस्था से मिलना चाहता हूँ, वो ठीक तो है ना।
तब रश्मि ने बता दिया था कि 15 मिनट के अंदर अंदर आस्था को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, तब तुम जाकर उससे मिल सकते हो। अचानक दादाजी बच्चे को आगे बढ़ाते हुए अरमान से बोले, बेटा तब तक तुम अपने बेटे को एक नज़र देख लो। तब अरमान मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं सबसे पहले अपनी बीवी को देखूंगा। ये सुनकर कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी कि चलो, अरमान अपनी बीवी को कितना प्यार करता है जो अपने बच्चे से पहले आस्था को देखना चाहता है। अब जैसे ही आस्था को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, अरमान के साथ साथ सारा परिवार उसके साथ पीछे पीछे चला आया। रूम में आने के बाद अरमान और बाकी सबने बारी बारी से आस्था का हालचाल पूछा। तभी आस्था ने मुस्कुराकर अरमान की ओर और बाकी सबकी ओर देखा, लेकिन अरमान का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अचानक आस्था भी परेशान हो गई और फिक्र करते हुए बोली, क्या बात है, आप क्यों मुरझाए हुए से लग रहे हैं? अरमान उदास मन से अपनी आवाज को शांत रखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है बेटा हुआ है और वो भी मेरे जैसा। तुम तो जानती हो मुझे बेटी चाहिए थी, बेटा भी हो गया तो ठीक है, लेकिन अब मुझे बेटी चाहिए, इसीलिए अब तुम मुझे बस बेटी पैदा करके दोगी। अब जैसे ही अरमान ने सबके सामने ये बोला, सब लोगों ने एक पल के लिए एक दूसरे की शक्ल को घूर कर देखा और फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं आस्था ने अपने सर पर हाथ मार लिया था कि उसे कैसा पति मिला है। उसकी बीवी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बेटे को जन्म दिया है और उसका पति अगले ही पल उससे डिमांड कर रहा है कि उसे बेटी चाहिए। फिलहाल अरमान की इस तरह की बात सुनकर आस्था मुस्कुरा दी।